मैं चंदन कुमार सामाजिक विज्ञान संकाय के बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और आपके बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपके सिलेबस के अंतर्गत सेकेंड यूनिट है भारतीय समाज का स्वरूप। इसके अंतर्गत अगला अध्याय है मुस्लिम विवाह, जिसकी भूमिका निम्न प्रकार है। भारत में एक लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया क्रियाशील रही है। इसे हम सांस्कृतिक ग्रहण की प्रक्रिया कहते हैं। इसके फलस्वरूप दोनों संस्कृतियों के अनेक तत्व एक दूसरे से प्रभावित हुए हैं, लेकिन तो भी मूल रूप से दोनों संस्कृतियों की प्रकृति एक दूसरे से काफी भिन्न है। मुस्लिम संस्कृति में विवाह तथा परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को समझने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम पुरातन अरबी व्यवस्था के संदर्भ में इनकी प्रकृति को समझने का प्रयास किया जाए। इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मुहम्मद द्वारा मक्का में की गई थी, लेकिन अरब की सनातनी धार्मिक व्यवस्थाओं से हजरत मोहम्मद के विचार कुछ भिन्न होने के कारण उनका व्यापक विरोध हुआ। फलस्वरूप मदीना में उन्हें शरण लेनी पड़ी और बाद में इसी स्थान से इस्लाम धर्म का व्यापक प्रसार होने लगा। इस्लाम क्योंकि प्राचीन अरबी धर्म का संशोधित रूप है, इसलिए आज भी मुस्लिम सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक व्यवस्था पर पुरातन अरबी व्यवस्था की अस्पष्ट छाप देखने को मिलती है। मुस्लिम समाज में परिवार विवाह और विवाह विच्छेद का जो रूप आज विद्यमान है वह प्राचीन अरबी व्यवस्थाओं से प्रभावित है। रॉबर्टसन स्मिथ ने प्राचीन अरबी समाज में विवाह की तीन विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, स्त्री अपने पति का चुनाव करने में पूर्णतया स्वतंत्र थी। दूसरा, स्त्री पति को अपने निवास पर बुलाती और जब चाहे उसे निकालकर बाहर कर देती थी। तीसरा, उसकी संतानें स्त्री के संबंधियों के संरक्षण में ही पलती थी। नवीन इस्लाम धर्म में स्त्री की स्वतंत्रता को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करते हुए भी परिवार में पुरुष को प्रधानता दी गई है। यही कारण है कि कुछ मुस्लिम परिवारों में मुता के रूप में अस्थायी विवाहों का भी प्रचलन आज भी है। यद्यपि सामान्य रूप से मुस्लिम समाज बहुपत्नी विवाही समाज के रूप में परिवर्तित हो चुका है, इसी प्रकार विवाह विच्छेद के क्षेत्र में भी स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के अधिकारों में वृद्धि हो गई है, जिसका मुस्लिम परिवार व्यवस्था पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। हेडिंग है मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह निकाह स्त्री और पुरुष के बीच होने वाला एक समझौता है, जिसका उद्देश्य परिवार की संपत्ति का उपयोग करना, बच्चों को जन्म देना तथा उन्हें वैध रूप प्रदान करना है। मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त का संविदा है, जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति तथा बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। लगभग इसी रूप में हेदया ने मुस्लिम विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौनिक संबंधों और बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना है तथा समाज के हित में पति पत्नी और उससे उत्पन्न संतानों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम विवाह में वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो संविदा के अंतर्गत आती हैं। संविदा में सामान्यतः तीन विशेषताएं होती हैं, क, दो पक्षों की स्वतंत्र सहमति, ख, स्वीकृति के रूप में कुछ पेशगी तथा ग, नियमों के द्वारा समझौते को मान्यता। मुस्लिम विवाह में यह सभी विशेषताएं विद्यमान हैं, अर्थात यह संबंध दो पक्षों की स्वतंत्र स्वीकृति से स्थापित होता है। इस समझौते के प्रतिफल के रूप में वर द्वारा कन्या को महर देना स्वीकार किया जाता है तथा विवाह संबंधों की स्थापना अनेक सामाजिक नियमों के अनुसार ही की जाती है। विवाह में संविदा की यह विशेषता एक ओर तो प्राचीन अरबी व्यवस्था के अनुसार स्त्री को अधिक स्वतंत्रता देने की भावना से संबंध है, तो वहीं दूसरी तरफ पर मुसलमानों की मुख्य सुख संबंधी विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। निम्नांकित विवेचन के आधार पर मुस्लिम विवाह की इस प्रकृति को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। हेडिंग, मुस्लिम विवाह के उद्देश्य। पहले, वैध रूप से स्त्री पुरुष को सहवास के अधिकार प्रदान करना। दूसरा, बच्चों को जन्म देना तथा उनके पालन पोषण की व्यवस्था करना। तीसरा, पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को महर के द्वारा स्थायी रूप प्रदान करना। चौथा, बच्चों के उचित पालन पोषण के लिए बहुपत्नी व्यवस्था को मान्यता प्रदान करना। पांचवा, एक संविदा के रूप में पति पत्नी को यह अधिकार देना कि किसी पक्ष द्वारा भी संविदा का पालन न करने पर दूसरा पक्ष उसे छोड़ सकता है। हेडिंग, विवाह की शर्तें, कंडीशन ऑफ मैरिज। मुस्लिम विवाह अथवा निकाह को निम्नांकित परिस्थितियों में ही वैध माना जा सकता है। पहला, प्रत्येक मुसलमान जिसकी आयु 15 वर्ष की हो चुकी है और जो सही दिमाग का है निकाह करने के योग्य है। नाबालिग बच्चों का विवाह भी उसके संरक्षक की अनुमति से हो सकता है। दूसरा, विवाह संबंध दोनों पक्षों की स्वतंत्र स्वीकृति से हो रहा हो और इस संबंध पर किसी प्रकार का दबाव न हो। तीसरा, काजी के सामने लड़के और लड़की ने एक दूसरे से विवाह करने की स्वीकृति दे दी हो। चौथा, दोनों पक्षों की ओर से विवाह की स्वीकृति मिलते समय साक्षी के रूप में कम से कम एक पुरुष और दो स्त्रियां उपस्थित हों। पांचवा, विवाह के प्रतिफल के रूप में मोहर की राशि का भुगतान कर दिया गया हो अथवा यह राशि निश्चित कर ली गई हो। छठा, दोनों पक्ष विवाह के समय अपनी सामान्य स्थिति में हो अर्थात शराब आदि के नशे में न हो। सातवां, दोनों पक्ष निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत न आते हो। विवाह के निषेध हेडिंग है प्रोहिबिशन रिलेटेड टू मैरिज। मुस्लिम विवाह में अनेक वैवाहिक निषेधों का पालन किया जाता है जिसकी अवहेलना करने पर विवाह को या तो रद्द कर समझ लिया जाता है अथवा दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष इस आधार पर दूसरे को तलाक दे सकता है। यह निषेध निम्न प्रकार है। पहला, कोई भी मुसलमान किसी मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। यदि भी मुसलमान पुरुष मूर्ति पूजक स्त्री को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म को मानने वाली स्त्री से विवाह कर सकता है लेकिन मुसलमान स्त्री एक मुसलमान के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। दूसरा, कोई भी स्त्री एक पति होते हुए दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। तीसरा, एक पुरुष चार पत्नियां होने पर पांचवीं स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। चौथा, बहुत समीप के रक्त संबंधियों के बीच विवाह संबंध निषिद्ध है। व्यवहारिक रूप से यह निषिद्ध दो पीढ़ी तक माना जाता है। पांचवा, तीर्थ यात्रा के समय विवाह संबंध वर्जित है। छठा, यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई अथवा पति से तलाक हो चुका है तो वह इसी इद्दत की अवधि तक दूसरा विवाह नहीं कर सकती। इद्दत 3 या 4 मासिक धर्म बीच का वह समय है जिसमें निश्चयात्मक रूप से यह जान लिया जाता है कि स्त्री गर्भवती तो नहीं है। सातवां, यदि किन्हीं परिस्थितियों में गर्भवती स्त्री को तलाक दे दिया गया हो तो वह स्त्री तब तक किसी अन्य पुरुष से पुनर्विवाह नहीं कर सकती जब तक कि बच्चे का जन्म न हो जाए। हेडिंग है महर अथवा स्त्री धन डावर। मुस्लिम विवाह में महर का निर्धारण एक अनिवार्य नियम है जिसे प्राप्त करने का स्त्री को सामाजिक और कानूनी अधिकार दिया गया है। महर का तात्पर्य उस धनराशि से है जो विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को प्रदान की जाती है। इस भविष्य अथवा भविष्य में उसके भुगतान का वायदा किया जाता है। प्राचीन अरबी समाज में महर का तात्पर्य कन्या मूल्य से था क्योंकि तब यह राशि वर पक्ष की ओर से कन्या के पिता को दी जाती थी। इस राशि को सदक कहा जाता था तथा कन्या के पिता का यह अधिकार था कि वह सदक की राशि वर पक्ष को वापस करके कभी भी अपनी कन्या को उससे स्वतंत्र कर ले। इस्लाम धर्म में इस स्थिति में कुछ सुधार करके महर को स्त्री की संपत्ति घोषित कर दिया गया जिससे इसका संबंध स्त्री को खरीदने से न जोड़ा जा सके। इस प्रकार प्राचीन अरबी व्यवस्था सदक का स्थान वर्तमान महर ने ले लिया। मुसलमानों में प्रचलित यह महर सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला, सत्वर महर, महरे मुअज्जत। यदि विवाह के समय अथवा विवाह के तुरंत बाद ही पति अथवा पत्नी को महर की राशि का भुगतान कर देता है तब ऐसे महर को सत्वर महर कहा जाता है। साधारणतः महर के इस रूप का प्रचलन बहुत कम पाया जाता है। दूसरी हेडिंग है स्थगित महर। यदि महर की राशि का भुगतान विवाह के समय न किया जाए बल्कि इसे विवाह विच्छेद होने अथवा भविष्य में किसी अन्य समय के लिए टाल दिया जाए तब इसे स्थगित महर कहा जाता है। महर के इस रूप का प्रचलन मुसलमानों में सबसे अधिक है। तीसरा, उचित महर, महरे मिस्ल। यदि विवाह के समय महर की राशि तय न हुई हो और बाद में किसी समय स्त्री अपने पति से इसकी मांग करे अथवा पति से तलाक मिल जाने के कारण इसके भुगतान की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब मुस्लिम कानून शरीयत के अनुसार तय किए गए महर को उचित महर कहा जाता है। यह महर न्यायालय द्वारा भी तय हो सकता है अथवा वर और वधु पर पारस्परिक समझौते से भी इसका निर्धारण हो सकता है। सामान्यतः ऐसे महर की राशि या तो लड़की के पिता की आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होती है अथवा उसके पति के परिवार में अन्य स्त्रियों को प्राप्त होने वाली महर की राशि के बराबर रखी जाती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि महर और दहेज में कोई समानता नहीं है। महर पति से पत्नी को दिया जाता है जबकि दहेज कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाता है। दहेज विवाह के समय ही दिया जाना अनिवार्य है जबकि महर विवाह के काफी बाद में और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। महर पत्नी की संपत्ति है जबकि दहेज पर व्यवहारिक रूप से लड़के के पिता का अधिकार होता है। मुसलमानों में महर को एक उपयोगी सामाजिक नियम के रूप में देखा जाता है। सर्वप्रथम इसके कारण पति की ओर से विवाह विच्छेद किए जाने की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में मुहर के भुगतान का नियम होने के कारण पुरुष तलाक के स्वतंत्र अधिकार का मनमाना उपयोग नहीं कर पाता। दूसरे, मुहर के द्वारा ही परिवार में स्त्री की स्थिति को सुदृढ़ रखना संभव हो सका है, क्योंकि शोषण की स्थिति में स्त्री कभी भी मुहर की मांग कर सकती है। तीसरे, यह प्रथा बहुपत्नी विवाह की संभावना को कम करती है, क्योंकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण अधिकांश पुरुष अनेक स्त्रियों को मुहर देने की स्थिति में नहीं होते। इस प्रकार सामाजिक और धार्मिक मान्यता मिलने के कारण मुस्लिम कानून में भी मुहर के निर्धारण को मान्यता दी गई है। अगली हेडिंग है मुस्लिम विवाह के भेद, टाइप्स ऑफ मैरिज ऑफ मुस्लिम। मुसलमानों में विवाह एक संविदा के होने के कारण एक अस्थायी बंधन नहीं है, बल्कि अस्थायी रूप से विवाह संबंधों की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार मुस्लिम विवाह के तीन रूप प्रमुख हैं, जिन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। पहली हेडिंग है निकाह, परमानेंट मैरिज। निकाह को सही विवाह भी कहा जाता है, जिसमें पति पत्नी की स्वतंत्र सहमति से विवाह संबंध स्थापित होता है और तलाक न दिए जाने तक यह बना रहता है। ऐसे विवाह पूर्णतया मुस्लिम रीतियों के अनुसार होते हैं। यद्यपि मुसलमानों में विवाह के इस रूप का प्रचलन सबसे अधिक है, लेकिन सुन्नियों में केवल इस स्वरूप को मान्यता ही दी जाती है। दूसरी हेडिंग है मुताह, टेम्पररी मैरिज। मुताह एक अस्थायी विवाह है, जो मुस्लिम समाज की ही विशेषता है। इस विवाह की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि इसका अनुबंध एक विशेष अवधि के लिए होता है, और इस अवधि के समाप्त होते ही विवाह संबंध अपने आप समाप्त हो जाता है। मुताह में भी महर का निर्धारण किया जाता है। यदि पति पत्नी निश्चित अवधि से पहले ही विवाह संबंध को समाप्त करना चाहें, तब उसे उसी समय महर की पूरी राशि का भुगतान करना होता है, और यदि पत्नी ऐसा करती है तब उसे अवधि के अनुपात में ही महर की राशि का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है। ऐसे विवाहों से बच्चों का भी पिता की संपत्ति में हिस्सा हो जाता है। यद्यपि हजरत मोहम्मद ऐसे विवाहों की अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, लेकिन तो भी इस्लाम द्वारा ऐसे विवाहों को मान्यता दी गई है। यही कारण है कि कुरान के कट्टर अनुयायी शिया लोग कुरान के आधार पर इसकी वैधता पर बल देकर इसे व्यवहार में लाना बुरा नहीं समझते। ऐसा प्रतीत होता है कि अरबी सामाजिक व्यवस्था में पहले इसी प्रकार के विवाहों का आधिक्य था, लेकिन बाद में इस्लाम धर्म में संशोधन होने से यौन सदाचार के आधार पर मुताह विवाह की निंदा की जाने लगी। तीसरा, फासिद विवाह। यदि विवाह के बीच कुछ कठिनाइयां आने लगी आती हों और उन्हें दूर किए बिना ही विवाह कर लिया जाए, तब ऐसे विवाह को फासिद विवाह कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि मुसलमान पुरुष किसी मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह कर ले, तब ऐसी विवाह फासिद विवाह होगा। यदि बाद में स्त्री धर्म परिवर्तन के द्वारा मुसलमान बन जाए, तब यह सही विवाह हो जाता है। हेडिंग, मुसलमानों में तलाक। मुसलमानों में विवाह की प्रकृति संवेदनात्मक होने के कारण यदि कोई भी पक्ष विवाह की शर्तों का उचित रूप से पालन नहीं करता, तो तलाक को पूर्णतया न्यायसम्मत माना जाता है। इतना ही नहीं, मुसलमानों में विवाह विच्छेद की प्रक्रिया जितनी सरल है, उतनी किसी भी दूसरे समाज में देखने को नहीं मिलती। वास्तव में तलाक की वर्तमान व्यवस्था भी प्राचीन अरबी प्रथा खोल का संशोधित रूप है। खोल की प्रथा के अनुसार पिता अपनी पुत्री के विवाह में मिले सदक अर्थात वधु मूल्य को वापस करके कभी भी उसे अपने पति से स्वतंत्र कर सकता था, लेकिन बाद में जब सदक का स्थान महर ने ले लिया, तो इसको लौटाकर स्त्री को उसके पति से स्वतंत्र कर लेने का प्रचलन समाप्त हो गया। कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि पत्नी महर लौटाकर विवाह विच्छेद करना चाहे, तो इसकी अनुमति उसे तभी मिलती है जब उसका पति भी इसके लिए तैयार हो। इस प्रकार तलाक के क्षेत्र में आज इस्लामी कानून पुरुषों के पक्ष में झुका है। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि पुरुष को अपनी स्वतंत्र इच्छा से केवल तीन बार तलाक 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 कह देने से स्त्री से संबंध विच्छेद कर सकता है, जबकि स्त्री को ऐसा करने के लिए पुरुष को दोषी प्रमाणित करना आवश्यक है। मुसलमानों में विवाह विच्छेद न्यायालय की सहायता के अतिरिक्त सामाजिक रूप से भी हो सकता है। इस प्रकार मुस्लिम विधि में स्वीकृत तलाक के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख निम्नांकित रूप में किया जा सकता है। हेडिंग, तलाक के प्रथागत स्वरूप। मुसलमानों में अधिकांश तलाक आज भी उनके प्रथागत कानूनों के अनुसार दिए जाते हैं। ऐसे तलाक बिना न्यायालय की सहायता के होते हैं और इनमें पुरुष को व्यापक अधिकार मिले हुए हैं। तलाक की प्रथागत पद्धतियां अग्र निम्न प्रकार हैं। पहली हेडिंग है तलाक। कोई भी सही दिमाग वाला वयस्क पुरुष कभी भी अपनी इच्छा से अथवा किसी मध्यस्थ के द्वारा तलाक की घोषणा कर सकता है। ऐसा करने में उसे कोई कारण स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है। यद्यपि एक तलाकनामे के द्वारा यह लिखित रूप से भी हो सकता है, लेकिन अलिखित तलाक को भी पूर्ण मान्यता प्राप्त है। यह अलिखित तलाक तीन प्रकार से हो सकता है। क, तलाके अहसन, इसके अंतर्गत पत्नी के मासिक धर्म के समय पति एक बार तलाक की घोषणा कर देता है और इद्दत की अवधि तक सहवास नहीं करता। इद्दत का समय व्यतीत होते ही वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। ख, तलाके हसन, यह अपेक्षाकृत रूप से एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक तुहर के समय ही नहीं बल्कि लगातार तीन तुहरों तक पुरुष को तलाक की घोषणा दोहरानी पड़ती है। तीन तुहरों के बीच का समय अर्थात लगभग 2 माह तक पति पत्नी के बीच सहवा नहीं होता है। तुहर का अर्थ होता है मासिक धर्म। ग, तलाके उल्बिद्दत, यह सबसे सरल तरीका है जिसमें पुरुष अपनी पत्नी अथवा पत्नी के किसी गवाह की अनुपस्थिति में भी किसी समय तलाक की घोषणा कर सकता है। प्रथम दो पद्धतियों में तुहर के समय तलाक की घोषणा का विधान इसलिए रखा गया है कि जिससे यह पता चल जाए कि तलाक के समय स्त्री गर्भवती तो नहीं थी। दूसरा, इला, यदि पति एक कसम लेकर 4 माह तक पत्नी के साथ सहवास न करने की प्रतिज्ञा करता है तब यह अवधि समाप्त होने पर तलाक की रस्म पूरी मान ली जाती है। यदि इस अवधि में सहवास हो जाता है तब तलाक वापस समझ लिया जाता है। ख, इस प्रकार के तलाक का प्रस्ताव पत्नी द्वारा रखा जाता है। ऐसी स्थिति में पत्नी यह आश्वासन देती है कि वह महर की राशि नहीं लेगी अथवा किसी अन्य रूप से क्षतिपूर्ति करेगी। यदि पति इस प्रस्ताव से सहमत हो तब दोनों के बीच तलाक हो सकता है। चौथा है मुबरअत, यह तलाक पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होता है जिसमें किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए कोई हर्जाना नहीं देना पड़ता। इस प्रकार खुला में पत्नी द्वारा क्षतिपूर्ति देना आवश्यक है जबकि मुबरअत में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। तलाक के उपयुक्त प्रकार पूर्णतया प्रथागत नियमों से संबंधित है जिसमें किसी भी स्तर पर अदालत की शरण लेनी नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त तलाक के निम्नांकित 2 रूप ऐसे भी हैं जिनका प्रस्ताव तो प्रथागत नियमों के आधार पर होता है लेकिन अंतिम रूप से तलाक की घोषणा अदालत द्वारा की जाती है। पांचवा है जिहर, यदि पति अपनी पत्नी को एक ऐसी स्त्री मान लेता है जिसके साथ मुस्लिम कानूनों के अनुसार विवाह संबंध नहीं हो सकता था तब पत्नी अपने पति के प्रायश्चित करने को कहती है। यदि पति इस प्रकार कोई प्रायश्चित न करे तब पत्नी अदालत के द्वारा उसके संबंध विच्छेद कर सकती है। छठा लियान, यदि पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाता है और अपने आरोप को वापस नहीं लेता तब पत्नी अदालत में तलाक के लिए प्रार्थना दे सकती है। ऐसे आरोप में स्त्री स्वयं ही अपने पति को तलाक नहीं दे सकती बल्कि उसकी प्रार्थना पर तलाक की घोषणा केवल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। तलाक के उपयुक्त सभी स्वरूपों से कभी कभी यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मुसलमानों में विवाह विच्छेद एक बहुत साधारण सी घटना है और बहुत सरलता से एक दूसरे को तलाक दे सकता है। यह वास्तविकता नहीं है। सच तो यह है कि मुस्लिम परिवारों में काफी स्थिरता पाई जाती है। मुहम्मद साहब से पहले अरब समाज में भले ही तलाक का प्रचलन काफी मात्रा में रहा हो लेकिन मुहम्मद साहब ने सबसे पहले तलाक की निंदा करते हुए इसकी अनुमति उसी स्थिति में दी जब दोनों पक्षों को यह आशंका हो जाए कि वे ईश्वरीय सीमा के अंदर नहीं रह सकते। एक मुस्लिम जनश्रुति यह है कि विवाह विच्छेद कानून सम्मत तो है किंतु ईश्वर उसे पसंद नहीं करता। यही कारण है कि तलाक के अधिकार पर नियंत्रण रखने के लिए मुसलमानों में इद्दत की अवधि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इद्दत सामान्यतः 4 मासिकों के बीच की 3 महीने की अवधि में सहवास की अनुमति न मिलने से पुरुष को अपने निर्णय के बारे में पुनः सोचने का पर्याप्त समय मिल जाता है। यदि तलाक की घोषणा किसी आवेश अथवा भ्रांति में की गई है तब इद्दत की अवधि में इसे पुनः वापस लिया जा सकता है। यह कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में तो पैगम्बर मुहम्मद साहब इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने पंचों अथवा न्यायाधीशों के हस्तक्षेप के बिना तलाक के अधिकार का उपयोग करना पुरुषों के लिए लगभग निषिद्ध सा कर दिया था। यह कथन भी मुस्लिम परिवारों की स्थिति और तलाक की संख्या में कमी की ओर संकेत करता है। हेडिंग है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। मुसलमानों में भी अनेक संतों और समाज सुधारकों की ओर से समय समय पर सामाजिक व्यवस्थाओं के दोषों तथा स्त्री पुरुष के अधिकारों के असंतुलन को दूर करने की मांग की जाती रही है। इसके फलस्वरूप सबसे पहले 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम लागू हुआ जिसके अंतर्गत स्त्रियों को भी कुछ विशेष परिस्थितियों में पति को तलाक देने के विस्तृत अधिकार दिए गए। ये अधिनियम निम्नांकित परिस्थितियों में स्त्रियों को तलाक का अधिकार प्रदान करता है। पहला, यदि प्रार्थना पत्र देने के 4 वर्ष पूर्व से पति के बारे में पत्नी को कोई जानकारी न हो। दूसरा, यदि पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में पिछले 2 वर्ष से लगातार असफल रहा हो। तीसरा, यदि पति को किसी अपराध में कम से कम 7 वर्ष की कैद हो गई हो और इसके लिए कोई अपील न चल रही हो। चौथा, यदि पति 3 वर्षों से अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रहा हो। पांचवा, यदि विवाह के समय से लेकर प्रार्थना पत्र देने के समय तक पति नपुंसक रहा हो। छठा, यदि पति प्रार्थना पत्र के 2 वर्ष पूर्व से पागल हो अथवा किसी संक्रामक यौन अथवा कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। सत्ता, यदि संरक्षक ने विवाह 15 वर्ष से कम की आयु में कर दिया हो और पत्नी ने सहवास होने तथा 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही ऐसी विवाह के विरुद्ध घोषणा कर दी हो। आठवां, यदि पति क्रूरता का दोषी हो, उसका बदनाम स्त्रियों से संबंध हो, व्याभिचारी जीवन व्यतीत करता हो अथवा पत्नी को व्याभिचार के लिए बाध्य करता हो, उसके संपत्ति अधिकारों का हनन करता हो, सभी पत्नियों के साथ समानता का व्यवहार न करता हो, उसके धार्मिक कार्यों में बाधा पहुंचता हो, तब भी न्यायालय में उसके विरुद्ध तलाक का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। नौवां, इसके अतिरिक्त किसी ऐसे अन्य कारण के आधार पर विवाह विच्छेद किया जा सकता है जो मुस्लिम सामाजिक कानून के अनुसार मान्य हो। अगली हेडिंग है मुस्लिम परिवार व्यवस्था। सभी सामाजिक व्यवस्थाओं के समान मुस्लिम सामाजिक व्यवस्थाओं में भी परिवार एक प्रमुख संस्था है। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि मुसलमानों की पारिवारिक व्यवस्था प्राचीन अरबी समाज की कबीला पद्धति से प्रभावित है, जिसमें अनेक मूल परिवारों का समावेश होता था। यह दृष्टिकोण अधिक उचित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्लिम परिवारों पर भारतीय संयुक्त परिवारों की एक अस्पष्ट छाप है, जिसमें संयुक्तता की धारणा और मुखिया के प्रभुत्व को विशेष स्थान दिया जाता है। इसके पश्चात भी मुस्लिम परिवार की संरचना और इसके दायित्वों से संबंधित विशेषताओं को समझने से पहले यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मुस्लिम परिवार भी धर्म प्रधान है। कुरान की आयतों में परिवार के संगठन, उत्तराधिकार के नियम, विवाह की पद्धति, सदस्यों के पारस्परिक संबंधों, विधवाओं और अपंगों की सुरक्षा और पारस्परिक सहायता के जिन नियमों का उल्लेख है, मुस्लिम परिवार उन्हीं विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस दृष्टिकोण से मुस्लिम परिवार की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप निम्नांकित रूप में समझा जा सकता है। पहली हेडिंग है संयुक्त और विस्तृत परिवार की संरचना। कुरान में संयुक्त परिवार प्रणाली को सबसे अच्छा कहा गया है। इस दृष्टिकोण से मुस्लिम परिवार में आज भी सदस्यों की संख्या काफी अधिक होती है तथा परिवार में किसी वृद्ध पुरुष को मुखिया के रूप में विशेष स्थान प्राप्त होता है। इस्लाम में वृद्ध व्यक्तियों का स्थान बहुत सम्मानित है, इसलिए परिवार के सभी सदस्य मुखिया के आदेशों में निष्ठा रखना धार्मिक रूप से आवश्यक समझते हैं। इसके अतिरिक्त मुसलमानों में विस्तृत परिवारों का भी प्रचलन है। इसका तात्पर्य है कि अक्सर विवाह के द्वारा आई स्त्रियों के रक्त संबंधी भी परिवार के सदस्य हो जाते हैं। यदि पुण्य परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता, मुस्लिम परिवारों में एक संयुक्त कोष जरूरी होता है, लेकिन हिंदू परिवार के विपरीत यहाँ ऋणों का भुगतान व्यक्तिगत रूप से करने का प्रचलन है। आज मुसलमानों में भी एकाकी परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन साधारणतया ऐसे परिवारों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। इस तरह आकार के दृष्टिकोण से हिंदू और मुस्लिम परिवार की संरचना में कोई विशेष भिन्नता देखने को नहीं मिलती है। दूसरी हेडिंग है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। मुस्लिम परिवार स्पष्टतः पितृसत्तात्मक है। यह सच है कि विवाह की प्रक्रिया में ऊपरी तौर पर स्त्रियों के अधिकार पुरुषों में से अधिक दिखाई देते हैं, लेकिन व्यवहार में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के अधिकार अधिक व्यापक हैं। परिवार का मुखिया कोई पुरुष सदस्य ही होता है तथा इसी के आदेशों के अनुसार विधवाओं, अनाथ बच्चों और अपंग सदस्यों को संरक्षण मिलता है। इसके अतिरिक्त विवाह विच्छेद में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक अधिकार मिलना भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ही स्पष्ट करता है। परिवार में बच्चों की शिक्षा और उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं के लिए भी सदस्य ही नीति निर्धारण करते हैं। विवाह के बाद स्त्री द्वारा अपने पति के घर जाकर रहना भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का ही लक्षण है। इस दृष्टिकोण से भी हिंदू और मुस्लिम परिवार में कोई भेद नहीं है। तीसरा, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन। मुस्लिम परिवार की एक प्रमुख विशेषता इसका बहुपत्नी विवाही होना है। मुसलमानों को धार्मिक और कानूनी रूप से 4 पत्नियां रखने का अधिकार मिला हुआ है। इसके फलस्वरूप अनेक संभ्रांत परिवारों में तो एक से अधिक स्त्रियों के विवाह करना सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय समझा जाता है। धार्मिक रूप से प्रत्येक मुसलमान से यह आशा की जाती है कि वह अपनी सभी पत्नियों से समानता के व्यवहार करेगा। पुरुषों ने इस आदेश का किस सीमा तक पालन किया है, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मुस्लिम परिवारों में बहुपत्नीत्व के कारण स्त्रियां बहुत से अधिकार पाने से वंचित रह जाती हैं। संभवतः स्त्रियां मानसिक रूप से इस स्थिति के प्रति पहले ही तैयार होती हैं। यही कारण है कि मुसलमानों में सामाजिक आधार पर तलाक की व्यवस्था होने पर भी इसे व्यवहार में कम ही प्रचलित पाया जाता है। आज अनेक शिक्षित मुस्लिम स्त्रियां बहुपत्नी विवाही परिवार को अच्छा नहीं समझती। इस आधार पर यह संभावना की जाती है कि मुस्लिम परिवार भी धीरे धीरे एक विवाही होते जाएंगे। इसके पश्चात भी मुसलमानों में बहुपत्नित्व की प्रथा ने उनके परिवारों को हिंदू परिवारों से भिन्न धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि हिंदू परिवार में कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकता। चौथी हेडिंग है पुरुषों व स्त्रियों में पृथककरण। मुस्लिम परिवारों में पर्दा प्रथा को एक महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य के रूप में देखा जाता है। इसके फलस्वरूप स्त्रियां घर के बाहर ही पर्दे में नहीं रहती, बल्कि घर परिवार के अंदर भी उनसे पर्दे के नियम के पालन की आशा की जाती है। साधारणतया प्रत्येक मुस्लिम परिवार में स्त्रियों और पुरुषों के रहने के लिए अलग अलग स्थान की व्यवस्था होती है। स्त्रियों को रहने के स्थान को जनाना खाना और पुरुषों के स्थान को मर्दाना खाना कहा जाता है। इस नियम का उल्लंघन तभी होता है जब आर्थिक साधनों का अभाव होने के कारण इतने स्थान की व्यवस्था न की जा सकती हो। मुस्लिम परिवार की यह व्यवस्था हिंदू परिवारों से पूर्णतया भिन्न है। पांचवा, परिवार में संस्कारों की प्रधानता। मुस्लिम परिवार का एक प्रमुख दायित्व धार्मिक संस्कारों को पूरा करना है। मुसलमानों में जो संस्कार प्रमुख है उनमें सातवां संस्कार, अकीका संस्कार, चिल्ला संस्कार, बिस्मिल्लाह तथा खतना संस्कार, निकाह संस्कार और मैयत संस्कार का स्थान महत्वपूर्ण है। सातवां संस्कार स्त्री के गर्भधारण से संबंधित है, जो गर्भकाल के सातवें महीने में पूरा किया जाता है। अकीका संस्कार प्रमुख रूप से पुत्र के जन्म से संबंधित है। यह पुत्र जन्म के सातवें दिन मनाया जाता है। इसमें फकीरों को दान देने और नमाज का विशेष महत्व होता है। चिल्ला संस्कार शिशु जन्म के 40वें दिन संपन्न होता है। इस दिन प्रसवा स्त्री को स्नान करा के पवित्र किया जाता है और संबंधियों द्वारा उसे उपहार दिए जाते हैं। भोज देना और खैरात बांटना इस संस्कार के प्रमुख अंग है। बिस्मिल्लाह संस्कार लड़कों से संबंधित है। पुत्र के 4 वर्ष होने के बाद उसकी मूत्र नलिका के ऊपरी भाग की खाल को काट दिया जाता है और तभी उसे मदरसे भेजा जाता है, जहां मुल्ला और मौलवी बच्चे को कुरान का पहला पाठ पढ़ाते हैं। कुछ व्यक्ति इसे खतना संस्कार भी कहते हैं। निकाह संस्कार विवाह संस्कार का पर्याप्त है। इसका विस्तृत उल्लेख हम अध्याय के आरंभ में ही कर चुके हैं। मुसलमान परिवारों में मैयत संस्कार भी विशेष महत्व है। यदि व्यक्ति की मृत्यु पर किया जाता है, इसके अनुसार मृतक को स्नान कराकर उसे एक सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है और फिर चारपाई पर लिटाकर उसे मस्जिद तक ले जाया जाता है। यहाँ मौलवी जनाजा की नमाज पढ़ता है। इसके पश्चात ही मृतक को कब्र में गाड़ा जाता है। प्रत्येक मुस्लिम परिवार का दायित्व इन सभी कार्यों को पूरा करना है। इन संस्कारों के आधार पर हिंदू और मुस्लिम परिवार अपनी कर्मकांडीय प्रवृत्तियों में एक दूसरे से अधिक भिन्न दिखाई देते हैं। छठवीं हेडिंग है परिवार के दायित्व धर्म प्रधान। मुस्लिम परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को वे दायित्व पूरा करना अनिवार्य है जो इस्लाम धर्म के आदर्शों के अनुसार है। उदाहरण के लिए परिवार के सभी सदस्यों द्वारा दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान के पूरे महीने व्रत रखना, अपाहिजों और गरीबों को दान देना, जीवन में कम से कम 1 बार हज आदि आवश्यक है। मुस्लिम परिवार की इन सभी विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि सभी समाजों के समान मुस्लिम समाज में भी परिवारों का उद्देश्य व्यक्ति को एक पवित्र जीवन व्यतीत करके कुछ विशेष सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की प्रेरणा देना है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के प्रभाव से मुस्लिम परिवारों की विशेषताओं में कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन यह परिवर्तन अन्य समाजों की अपेक्षा बहुत कम है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक मुसलमान की इस्लाम के परंपरागत आदेशों में अत्यधिक निष्ठा है और साधारणतया वे धर्म से संबंधित किसी भी पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। इसके फलस्वरूप मुस्लिम परिवारों को परंपरावादी परिवारों की ही श्रेणी में रखना उचित होगा। इस प्रकार आपका मुस्लिम विवाह यही संपन्न होता है। धन्यवाद।